श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 24 श्लोक संख्या 24 दिनांक 2 अगस्त 2015 स्पीकर हिज ग्रेस कमल लोचन प्रभु।
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये गोवर्धन लीला का चर्चा शुरू हो रही है। वैसे ये श्लोक के पहले वाले श्लोकों तक भगवान श्री कृष्ण ने नंद महाराज उनके पिता और उनके जो चाचा समझिए उपनंद इत्यादि और अन्य ब्रजवासियों को उन्होंने तर्क दिया। किसका तर्क दिया? इंद्र को पूजा क्यों नहीं करना चाहिए, इंद्र को पूजा क्यों नहीं करना चाहिए। उसकी तर्क में तर्क को पेश करते हुए उन्होंने गलत सिद्धांत का सहारा लेते हुए तर्क को पेश किया, यानी दूसरे शब्दों में गलत सिद्धांत के द्वारा इंद्र की पूजा करना अगर गलत है तो सही सिद्धांत के द्वारा कितना गलत होगा। बात यह है, तो आप सब जानते हैं षड दर्शन करके कुछ होता है, यानी 6 सिद्धांत होते हैं, न्याय वैशेषिक सांख्य योग पूर्वमीमांसा त्रिमीमांसा, ये जिसको 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी या षड दर्शन कहा जाता है। ये षड दर्शनों में जो न्याय वैशेषिक है या सांख्य है या कर्मीमांसा है, इन 3 या 4 सिद्धांत का सहारा लेते हुए जो नास्तिक है उसका सहारा लेते हुए कृष्ण ने ये साबित किया कि हे नंद महाराज, हे पिताजी, आपको इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। अभी ये श्लोक में और अगले श्लोक में कृष्ण प्रस्ताव रखते हैं, अगर इंद्र का पूजा नहीं करना है तो किसका पूजा करना है, उसका वर्णन ये 2 श्लोकों में हुआ है। तो ये 2 श्लोकों में जो पहला श्लोक है उसके अंदर कृष्ण प्रारंभ कर रहे हैं, क्या किस उद्देश्य से श्लोक उच्चारण किया जा रहा है। इंद्र एक क्षुद्र देवता है, उनको पूजा करने लगे हो तो ये कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को कहने के बाद कृष्ण कहते किसकी पूजा करने की आवश्यकता है, उसकी एक भूमिका बना रहे हैं। तो पहले ये बात देखते हैं कृष्ण ने जो तर्कों को पेश किया वो कैसे तर्क है। सबसे पहला इंद्र ने तर्क कृष्ण ने तर्क दिया कि इंद्र तो अपना ड्यूटी कर रहा है, अगर आप उनको पूजा करोगे रिश्वत देने के बराबर होगा। देखो हर एक व्यक्ति जो है सुख संपत्ति जो भी प्राप्त करता है अपने कर्मों के हिसाब से प्राप्त करता है, तो इंद्र जो है आपका कर्मों को आपको दे रहा है, उस पर इंद्र की कौन सी बड़ी बात है, इंद्र को क्यों पूजा कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं पूजा करने की। क्योंकि आप पूजा करो ना करो कर्मों के वश के अंतर्गत ही है, इस जगत में कोई ईश्वर नामक चीज नहीं है। अगर मान भी लेते हैं अगर कोई ईश्वर है वो भी कर्मों के अधीन हो जाता है, यानी कर्मीमांस सिद्धांत को वर्णन किया। कर्मीमांस के द्वारा ये इंद्र को पूजा नहीं करना चाहिए कृष्ण ऐसा बताने के बाद फिर सांख्य दर्शन का सहारा लेते हैं। सांख्य दर्शन भी निरीश्वरवाद का दर्शन है जिसके अंदर कहा जाता है 3 गुणों की परस्पर संयोग से सारा कार्य जगत में हो रहा है। सत्व रजस्तम, सत्व गुण के रजत गुण के द्वारा सृष्टि होता है, रजस्तम सत्व गुण के द्वारा वो पालन होता है, तमोगुण के द्वारा नाश होता है, उसके पीछे कोई ईश्वर का हाथ नहीं है। इस बात को सिद्ध करने के लिए पिछले श्लोक में भगवान एक बड़ा सुंदर तर्क दिया, ने कहा अगर इंद्र के द्वारा बारिश मिलता है, इंद्र बारिश जो है वो खारा पानी वाला समुद्र में भी होता है कि नहीं, अगर इंद्र बुद्धिमान होता अगर उसके अंडर में बारिश होता तो खारा पानी जहां उधर क्यों बारिश गिरा रहा है, या वो मूर्ख होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में उसके वो नियंत्रक नहीं है बारिश का, या उसका अस्तित्व ही नहीं है। ये जीव भी होता है सत्व रजस तमा, इन तीनों गुणों के संस्पर्श से होता है। जब रजोगुण होता है उस समय बादल जो है गरजते, बादल का मूवमेंट होता है, पानी बरसने लग जाता है और पानी बरसता है और फसल उगता है। वो फसल उगने के द्वारा जब हम गाय और हम लोग खाते हैं उसको, हमारा सत्वगुण के द्वारा हमारा जीवन जो है स्थिति को प्राप्त करता है, और अंततः तमोगुण के द्वारा सबका नाश होता है। ये केवल सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का खेल है। ये कौन कह रहे बात? कृष्ण अपने पिता को कह रहे। बड़ा गहरा सिद्धांत है, भले ये नास्तिक सिद्धांत है लेकिन बड़ा गहरा चीज है। तो अगर कोई कहे इंद्र बारिश देता है, बारिश पत्थरों वाली जमीन में भी गिरती है, क्या इंद्र को मालूम नहीं पत्थरों का जमीन इधर बारिश नहीं गिराना चाहिए? मान लीजिए आपके हाथ में पानी डालने का कोई जिम्मेदारी दिया तो आप पानी डाल रहे हो। मान लो कि आप सीमेंट का जहां जमीन है उधर पानी डाल रहे हो, या पत्थरों के पानी डाल रहे हो, तो क्या बोलेंगे लोग आपको? क्या कर रहे, पागल हो गए हो क्या? हाँ, अगर आपके अंडर में नियंत्रण में पानी डालना है तो अगर आप बुद्धिमान हो तो सही जगह पानी डालना चाहिए। अगर इंद्र के द्वारा बारिश आता है तो अलग अलग जगह बारिश गिरा रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि बारिश जो है उसके अंडर में नहीं है, खाली बोलने के मात्र है। ये सब बड़ा गहरा तर्क है, पता नहीं कि 7 साल का बालक कहां से सब सीखा, जो भी है समझ लीजिए। ये सीख के उन्होंने पिता के सामने ऐसा प्रस्तुत किया तो पिताजी भी एकदम शांत चुप, कुछ बोल नहीं पाए। अब इसके बाद ये श्लोक को वर्णन करते हैं। तो ये श्लोक में कृष्ण ने अपने पिताजी को कहा, ना नहा पुरो जनपदा, ना हम पुरा, पुरा मतलब शहर, नाम शहर में निवास करते हैं। कृष्ण वृंदावन जो है, गोवर्धन जो या नंदग्राम जो है, वो गोकुल भी है, वो ना शहर है। दूसरा जनपदा, जनपदा मतलब सबर्ब्स, जैसे कोई बस्ती है उसको जनपदा कहा गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आना जाना रहता है, रोड वगैरह सब बना हुआ है, उसको जनपद कहा गया है। ना बस्ती में भी हमने रहते नहीं है, बस्ती भी नहीं हमारा, ना ग्राम, हमारा ग्राम भी नहीं है। देखिए हम लोग बोलते हैं ना वृंदावन, नंदगांव, नंदगांव तो बाद में बसा गया, वो ओरिजिनली गांव नहीं था, वो हम बोलते हैं नंदगांव, लेकिन ग्राम भी नहीं है वो, क्योंकि वो केवल पर्वत मात्र था, कि ऋषि आके तपस्या कर रहे थे, उधर कोई बस्ती नहीं थी, गोकुल था, उधर से गोकुल से कृष्ण और ब्रासा कृष्ण की रक्षा के लिए सारे लोग आके उधर बसने लगे। तो ये पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के ऊपर कोई गांव रहता है क्या? नहीं रहता है। तो न ग्राम न गृहा वयम, तो कृष्ण कहा हमारा कोई घर नहीं है, क्योंकि कृष्ण और जितने भी नंद महाराज थे वो ऐसे जात के थे जिनका कोई घर नहीं होता, कभी इधर रहते कभी उधर रहते, कभी इधर रहते कभी उधर रहते। एक्चुअली प्रकार का बताया जाए कि निम्न स्तर के वैश्य परिवार के थे। वैसे कृष्ण तो दिव्य है लेकिन सब ब्रजवासी दिव्य है। जब आए तो वैसे एक ट्राइब के विषय में, जिसको जिप्सी बोला जाता ना, थोड़ा हायर लेवल जिप्सी बोला जा सकता है, वैसे ट्राइब के थे। उन्होंने कहा कि ना गृहा वयम, हमका हमारा कोई घर नहीं, आज इधर कहीं और उधर, इसलिए पूरा का गांव शूट हो जाता है कृष्ण के साथ में। जब गोकुल से सब लोग डिसाइड किया कि हमको बस इधर रहना नहीं है, पूरा गांव जो शिफ्ट हो गया गोकुल से वो नंदगांव तक आने के बीच में उनको कम से कम 8-9 महीना लगे। कुछ दिन एक जगह, कुछ जगह लगे, कुछ समय कुछ जगह लगे, कुछ जगह निवास कर रहे थे। जैसे आप जब जानते हो कि वृंदावन हम जाते हो तो हाईवे से हम वृंदावन के लिए जब जाते तो राइट टर्न लेते हैं, तो वो जिस जगह सब गाड़ियां खड़ी रहती हैं उसको छतीकरा बोला जाता है, छतीकरा। ये छतीकरा वो था वो जिस जगह कम से कम पूरा गोकुल से जब कृष्ण नंदगांव गए थे उधर 2 महीना रुके थे। छतीकरा मतलब जहां छत डाल के रुके थे, उसको छतीकरा कहा गया है। तो ऐसा नहीं कि कृष्ण जो है और उनका कोई स्थायी निवास था। कभी भी आप कुछ जगह देखते हैं पहाड़ियों, पहाड़ी लोग होते हैं या कुछ ऐसे अलग प्रकार के आदिवासी ट्राइब इत्यादि होते हैं, कभी घर उनका इधर है, कभी घर उनका इधर है, उनका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं होता है, देयर इज नो परमानेंट एड्रेस फॉर देम। गांव का गांव शिफ्ट होता है, अभी तो आजकल वो कम दिखाई पड़ता है, लेकिन फिर भी राजस्थान में, कहीं गुजरात के डेजर्ट में, और कहीं बिहार में, झारखंड में, उधर जाओगे ना आप, जाओगे एक समय कम से कम 1000 लोगों की बस्ती एक जगह रहेगी, अगले साल जाके देखे उधर कोई नहीं है, कहां गए 1000 के 1000 लोग, कहीं चले गए, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। जहां मौका मिला या जहां उनको खेती होता है, जहां उनको कुछ मिल जाता रहने के लिए, वो रह जाते हैं। उनका कोई संपत्ति अपना खुद नहीं रहता है, अपना कोई जमीन जायदाद ऐसा कुछ नहीं रहता है, अपना घर करके कुछ नहीं रहता है, वैसे परिवार वाले आज भी दिखाई पड़ते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि ना नहा पुरो जनपदा, नाम जनपद में रहते हैं, ना पुर में या सिटीज में रहते हैं, ना ग्राम में रहते हैं, नागरी हमारा कोई घर ही नहीं है, तो कहां रहते हैं, एड्रेस क्या है कृष्ण का? कृष्ण कहते हमारा एड्रेस क्या है, वनो कसा आप वन में निवास करने, वनवासी है, मतलब वनवासी, वनवासी मतलब वन में निवास करने, जैसे रामचंद्र जिस भले ही राजा परिवार थे, वन में थे, वन में किसी का कोई एड्रेस नहीं होता है, कभी इधर रहा कभी कहीं और रहा, कहीं इधर रहा कहीं कुछ और रहा, ये वनवासी है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम कौन है, वनवासी है, वनो कसा तात नित्यम नित्यम वन शिला निवासी न, हम वनवास में निवास करने वाले, और नित्य कहां है हम लोग, नित्यम वन शैल निवास निवासी नहा, शैल मतलब पर्वत, पर्वतों में रहते, कभी जंगलों में रहते हैं, तो हमारा कोई एड्रेस नहीं है, कोई एक ठिकाना नहीं है हमारा, तो हमको कौन देखभाल करता है, हमको कौन रक्षा करता है, कोई रक्षा नहीं करता है। इंद्र को छोड़ो कोई समाज के ऊपर निर्भर नहीं है, हम स्वतंत्रता से घूमने वाले हैं, कभी वन में रहते कभी शहर में रहते कभी पहाड़ के ऊपर रहते हैं। तो इसलिए हमारे साथ जो गायें हैं, सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए अगर कुछ कोई है हमारे जीवन में, कृष्ण कहते हैं वंदे महाराज को, वो हमारी गाय, और इन गायों को पोषण करने वाले ये वन, और इन वनों के ऊपर भी एक और एक है ये गोवर्धन, इधर लिखा है ना वन शैला, शैला मतलब एक पहाड़, वन शैला निवासिना, हमारी गायों के द्वारा हम जी रहे हैं, उन गायों को देखभाल करने वाले वन है, और दूसरा क्या है गोवर्धन या पर्वत है। वन का इधर अर्थ है वृंदावन, शैल का अर्थ है गोवर्धन, तो ये वनों में गायें चरती हैं, गोवर्धन के पर्वत के ऊपर जाती हैं, उधर भी चरती हैं, आनंद लेती हैं, रमती हैं, उधर के जितने बहुत सुंदर सुंदर झरने हैं उन सबको आनंद प्रदान करने वाला ये वृंदावन और गोवर्धन, इन दोनों के द्वारा हम जीवित हैं, इन दोनों गाय को पोषण करती हैं, और गाय समृद्ध है तो हम भी समृद्ध है, इसलिए निवासिना, हमारा निवास स्थान जो है, निवासिना का मतलब केवल रहना ही नहीं, हम निर्भर करते हैं किसके ऊपर, इन वनों के ऊपर और गोवर्धन के ऊपर। देखो बारिश तो अपने आप आएगी, आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, जैसे समुन्द्र में कोई रहता नहीं फिर भी बारिश आता है, क्या समुन्द्र में कमान लो कोई रहता भी है, क्या इंद्र का पूजा की तभी बारिश आए क्या? नहीं, जब उधर बारिश आएगा बिना कुछ किए, इधर क्यों आएगा, क्यों नहीं आएगा बिना कुछ किए, तो इंद्र का पूजा करने की जरूरत नहीं है। अगर पूजा ही करना है तो मेरा प्रस्ताव सुनो करके अगले श्लोक में प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन बात यह है कि इस श्लोक में उस प्रस्ताव का एक भूमिका बना रहे हैं। क्या है वो भूमिका? वो है निवासिना वन शैला, वृंदावन और गोवर्धन, ये हमारा निवास स्थान है। कृष्ण स्वयं करते हैं ये, मैं इधर निवास करता हूं। इसलिए गोवर्धन की महिमा, वृंदावन की महिमा और गायों की महिमा, ये तीन चीजों की महिमा गाने वाली ये लीला है। भगवान ने धीरे धीरे से अपने पिता को उंगित किया, देखो पिताजी अभी आप जिस इंद्र को पूजा करना चाहते हो कोई जरूरत नहीं, इसी पूजा अगर आप करोगे जिसके द्वारा हमारी पोषण हो रहा है, किसकी करोगे? वृंदावन का करो, गोवर्धन का करो और गायों का करो। देखिए कृष्ण ने इतना सारा तर्क दिया, इतनी सुंदर लीला रचाया, उसके पीछे भले ही अनेकों अनेक उद्देश्य है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य जानना चाहिए, वो क्या है? वो है गायों की रक्षा। क्योंकि गायों को प्रसन्न करना, गायों को देखभाल करना, इसके विषय में कृष्ण ने बहुत जोर दिया इस लीला के द्वारा। इतना हद तक गोवर्धन, इसका नाम इसलिए गोवर्धन है क्योंकि गो मतलब गाय, वर्धन मतलब बढ़ाना, गायों की आनंद को बढ़ाने वाला, गायों को पोषण करने वाला है गोवर्धन, इसलिए गोवर्धन की महिमा और बढ़ गई है। वैसे उपदेशामृत में, रूप गोस्वामी पाद के अनेकों अनेक ग्रंथों में, रघुनाथ दास गोस्वामी के ग्रंथों में आप देखोगे कि गोवर्धन के ऊपर बहुत बहुत आसक्ति था। रूप गोस्वामी इस बात को कहते हैं, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्राभि रासोत्सवात्, वैकुंठ से श्रेष्ठ है मधुपुरी, मधुपुरी जहां भगवान साक्षात जन्म लिए। क्यों मधुपुरी मदुरा क्यों श्रेष्ठ है? भगवान ने जन्म लिया उधर, वैकुंठ में भगवान जन्म की लीला नहीं होती है। बाद में मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवा वृंदारण्य उदार प्राणी रमणा वृंदारण्य, जहां भगवान ने रास लीला किया वो मथुरा से श्रेष्ठ है। पहला वैकुंठ है, वैकुंठ से श्रेष्ठ क्या है? वो मथुरा, क्योंकि भगवान ने जन्म लीला दिखाया। लेकिन भगवान का जन्म की जो लीला है उसकी सार्थकता कब हुई? भगवान जब रास किया ना, तब उन्होंने अपने आप को सार्थक माना। तो रास लीला जब किया भगवान कृष्ण ने, अपना जन्म का सार्थकता माना, इसलिए वृंदावन जो है जहां भगवान ने रास लीला किया उसको मथुरा से श्रेष्ठ माना गया है। बाद में उदार पाणि रमणा तत्रापि गोवर्धनः, तत्रापि गोवर्धनः, वृंदावन से श्रेष्ठ किसको माना गया? गोवर्धन को माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि उदार पाणि रमणात्, पाणि मतलब उनके हाथ, कृष्ण ने अपने स्वयं अपने हाथों से गोवर्धन को उठाया, उसके वजह से गोवर्धन इतने आनंद में, रमण में इतना फुलकित होते अपना शरीर को बड़ा विस्तार कर लिया था। इसलिए वृंदावन, वृंदावन के ऊपर क्या है? उदार पाणि रमणात् तत्रापि गोवर्धन, ये गोवर्धन वृंदावन से श्रेष्ठ है। वैकुंठ से मथुरा, मथुरा से वृंदावन, वृंदावन से गोवर्धन श्रेष्ठ है। बाद में कहा गया है इस गोवर्धन की गोदी में दो वो एक कुंड है, राधा कुंडम यहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कहा, सेवाम विवेकी न कहा। ऐसा कौन व्यक्ति है, विवेकी है, बुद्धिमान व्यक्ति है, जो राधा कुंड में विवास नहीं करना चाहता है? कहाँ है राधा कुंड? ये राधा कुंड कहीं और नहीं है, गोवर्धन के तट में है। इसलिए कहा गया जिस श्लोक में कि प्रेमामृता प्लावनात् कुर्यादस्य विराज गिरि तटे, ये गोवर्धन के तट में निवास, जो कुंड है तो उस कुंड के तट में निवास करने वाला ऐसा कौन व्यक्ति जो विनाश निवास नहीं करना चाहता है? तो सबसे सर्वोच्च स्थान इस जगत में अगर कुछ है तो राधा कुंड है। लेकिन वो राधा कुंड का एड्रेस क्या है? राधा कुंड का एड्रेस है गिरि तटे। कहां है वो? गोवर्धन की तलेटी पे है, गोवर्धन की तट पे है। तो ये राधा कुंड का ये एड्रेस है। तो इसलिए भले ही राधा कुंड को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन है कहां राधा कुंड? ये गोवर्धन पे है। इसलिए गोवर्धन की विशेष महिमा को गाते हुए दशकम गोवर्धन निकट निवास, शतकम दशकम अष्टकम अनेक अनेकों चीजों को गाते रूप गोस्वामी पाद स्तवावली में वचना करते हैं गोवर्धन धारणम, गोवर्धन को कैसे धारण किया भगवान ने, पूरा लीला को बहुत सुंदर सुंदर पद्यों में वर्णन किया। चाहे आप कोई भी ग्रंथ को लो, गोवर्धन की लीला जो है उसका वर्णन होता है। भले कृष्ण की लीला लोगों को कोई और लीला मालूम हो ना मालूम हो, लेकिन एक लीला जरूर मालूम होता है, वो क्या है? वो गोवर्धन की लीला। इसलिए गोवर्धन का विशेष स्थान है। तो भगवान श्री कृष्ण जब इस गोवर्धन लीला को इधर प्रकाशित कर रहे हैं। तो गोवर्धन का थोड़ा सा हम विशेषता को जानना प्रयास करेंगे। गोवर्धन है क्या, व्हाट इज दिस, इतना महिमा क्यों है इसका, इसके विषय में अनेकों अनेकों जगह इधर इतना क्यों कहा गया है, हरिदास वर्णी कहा गया है गोवर्धन को, क्यों कहा गया है, क्या कारण है इसको हरिदास वर्णी कर कहने की। तीन लोगों को हरिदास वर्णी कहा गया भागवत में, उनमें से एक गोवर्धन है। तो हरिदास वर्णी करके क्यों कहा गया इस गोवर्धन को, क्योंकि एक बार गोलोक वृंदावन धाम की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ में बैठे थे तो राधा रानी से बड़े प्रेम से आदान प्रदान हो रहा था। राधा ने पूछा कृष्ण से, राधा रानी ने पूछा मुझे ऐसा एक जगह चाहिए, मुझे ऐसा एक जगह चाहिए जहां हमारी सारी लीला संपन्न हो सके। जैसे कभी कुछ लीलाओं के लिए जल की आवश्यकता होता है, जल क्रीड़ा के लिए, कुछ लीलाओं के लिए तब उनको जमुना जाना पड़ता है, कुछ लीलाओं के लिए पर्वत की आवश्यकता पड़ता है, कुछ लीलाओं के लिए एक सुंदर वन की आवश्यकता पड़ता है, कुछ लीलाओं के लिए जंगल की आवश्यकता पड़ता है, कुछ लीलाओं के लिए झरने की आवश्यकता पड़ता है। तो जहां जहां ये सब चीज उधर जाना पड़ता है। राधा रानी ने पूछा कि ये सब कुछ एक जगह हो, ऐसा कोई चीज निर्माण कीजिए। कृष्ण अति प्रेम से राधा रानी के निवेदन सुन के उनके प्रेम वश कृष्ण अपने हृदय की ओर देखे, ही लुक्ड एट हिज हार्ट। और जैसे जैसे कृष्ण ने अपने हृदय की ओर देखा, ये सब ये लीला हुई गोलोक वृंदावन धाम में, उनके हृदय से एक ऐसा एक सोने का एक प्रकाश उत्पन्न हुआ, स्वर्ण रंग का ऐसा प्रकाश उत्पन्न हुआ, एकदम बड़ा 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 होते 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 एक बड़ा पहाड़ का रूप धारण किया। और इस पहाड़ के अंदर से अनेकों अनेक वृक्ष प्रकट होने लगे, इतना सुंदर इतना अद्भुत ये पर्वत प्रकट हुआ। तो राधा रानी उसको देख के इतना मुग्ध हो गए, मोहित हो गए। मोहित होके राधा रानी ने कहा था कि आपने ये जो सुंदर स्थान बनाए मेरे लिए, आप जितना प्रिय हो ये गोवर्धन भी ये मेरे लिए उतना प्रिय है। तो गोवर्धन का प्राकट्य कहां से हुआ था, भगवान श्री कृष्ण के हृदय से प्रकट हुआ, इट्स मैनिफेस्टेड फ्रॉम हिज हार्ट। वैसे तो इस लीला में कृष्ण ने जो है उस गोवर्धन को उठाया, धारण किया, ऐसे उंगली के ऊपर उठाया, हम सुनते हैं। ये उंगली के उठाने की बात तो छोड़िए, उनके हृदय से प्रकट हुआ चीज है। तो यह है क्या, ये हृदय से कृष्ण के हृदय में क्या है, व्हाट इज देयर। कृष्ण के हृदय में राधा प्रेम है, और कृष्ण प्रेम कहां है, राधा रानी के हृदय में है। और कृष्ण के हृदय में क्या है, राधा रानी के प्रति प्रेम है। तो ये राधा प्रेम का स्वरूप है गोवर्धन। कृष्ण के हृदय में जो छुपा हुआ राधा प्रेम है वो स्वरूप है, उसका मूर्तिमान स्वरूप है गोवर्धन। और ये राधा प्रेम में नित्य निवास करने वाले कृष्ण है, वो गोवर्धन वैसे कृष्ण है, एक तरीके से देखा जाए हरिदास वरिया। तो इसके पीछे बहुत गहरा तत्व, हमारा आचार्य ने कहा ये राधा प्रेम है कृष्ण के, कृष्ण राधा के प्रति जो प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है गोवर्धन, ये स्वर्ण रंग का है। और इधर हर प्रकार की सुविधा है। जब कृष्ण ने कहा अन्य राधा रानी को, चलो अभी हमारा जाने का समय आया है, पृथ्वी पे लीलाएं करना है, राधा रानी कहा मैं नहीं जाऊंगी। तब कृष्ण ने पूछा क्यों, ने कहा जहां यमुना नहीं है, जहां गोवर्धन नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो कृष्ण ने कहा आप चिंता मत करो, मैंने इस गोवर्धन को पहले से बेच दिया है, तो हमारी लीलाओं को संपन्न करने के स्थान है। तब राधा रानी कहा ठीक है मैं जाऊंगी, और एक कंडीशन, आपके बिना कैसे रह सकती हूं मैं। तो कृष्ण ने कहा आप चिंता मत करो, जब तक मैं प्रकट नहीं होगा, मैं तुम्हारे सामने नहीं हूं, तब तक तुम आंख नहीं खोलोगी। जैसे दो वरदान दिया था राधा रानी को, एक जब तक मैं प्रकट नहीं होगा तब तक अब आंख नहीं खोलोगी, दूसरा क्या था, गोवर्धन भी साथ में जाएगा, गोवर्धन पहले से ही रहेगा तभी अब तक। तो श्रीमती राधा रानी को कितना प्रिय है गोवर्धन, ये हमको इस लीला से पता लगता है कि गोवर्धन कुछ और नहीं है, कृष्ण के हृदय में राधा रानी के प्रति छुपा हुआ प्रेम का बहिरंगिक प्राकट है। तो इसलिए गोवर्धन जो है वो कृष्ण की सृष्टि है, वृंदावन जो है वो बलराम जी माना जाता है, लेकिन विशेष तरीके से राधा कृष्ण की लीलाओं को संपन्न करने के लिए पूरा व्रज का निर्माण बलराम जी करते हैं। बलराम जी सारे कृष्ण लीलाओं के आधार है, इस आधार शक्ति है, और सारी लीलाओं को संपन्न करने वाले जो है युग माया होती है। लेकिन कृष्ण का ऐसा कौन सा सृष्टि है जो व्रज में कृष्ण की स्वयं की सृष्टि अगर कुछ है तो ये गोवर्धन है, इसलिए गोवर्धन विशेष है। अन्य स्थानों से विशेष है, जिसकी गोद में राधा कुंड वो भी विशेष है, क्योंकि राधा कुंड की सृष्टि जो है वो किसने किया था, वो राधारानी ने किया, और कृष्ण की जो कुंड है कृष्ण किया तो कृष्ण कुंड है या श्याम कुंड है। ये श्याम कुंड राधा कुंड असली गोवर्धन का पार्ट ही है। तो ये गोवर्धन खास करके हमारे प्रयोजन आचार्य हुए हैं, जिनका नाम है रघुनाथ दास गोस्वामी, इनकी जिनके बारे में कुछ प्रवचन पहले कहा था। रघुनाथ दास गोस्वामी जो है, दास गोस्वामी के रूप में हम कहते हैं, वो गोवर्धन के तट के ऊपर उन्होंने भजन किया, उनके भजन स्थली है, उनका समाधि है उधर राधा कुंड के तट में। सारे अनेक अनेकों रचनाओं को उन्होंने गोवर्धन के तट पे किया, राधा रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी के आराध्य देव है राधा गिरिधारी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी एक बहुत सुंदर दशकम लिखते हैं, जिसके अंदर प्रार्थना करते हैं, देही देव हे गोवर्धन निकट निवासम देही गोवर्धनस्त्वम। प्रत्येक लाइन में गोवर्धन की स्तुति करते करते लास्ट में निकट निवासम देही गोवर्धनस्त्वम, निकट निवासम देही गोवर्धनस्त्वम, हे गोवर्धन मुझे आपके निकट निवास करने का सौभाग्य प्रदान करो, आपके निकट निवास करने का सौभाग्य प्रदान करो। अस्तित्व अगर देखकर बता जाए तो हमारा गौड़ीय वैष्णव धारा के अनुसार गोलोक वृंदावन जाना भी हमारा गंतव्य नहीं, हमारा गंतव्य है गोवर्धन के निकट निवास करके राधा कृष्ण का नित्य आहरण स्मरण करना, ये हमारा प्रयोजन है। हमारे जो प्रयोजन आचार्य है रघुनाथ दास गोस्वामी, तो रघुनाथ दास गोस्वामी की जो प्रार्थनाएं होती है वो हमारा प्रयोजन का मुख्य तत्व है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हे भगवान मुझे गोलोक लेके जाओ, मैं आपके गोलोक में जाना चाहता हूँ, गोलोक वृंदावन जाना चाहता हूँ, इसको भी हमारा प्रयोजन नहीं माना जाएगा। ठीक ठीक तरीके से जांच किया जाए हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को, हमारा गंतव्य कुछ नहीं है गोवर्धन की निकट में जाके उधर जाके राधा कृष्ण का नरेश भजन भजन करना, वो भी कैसे क्या भाव में, मंजरी भाव में करना, ये जो बहुत बहुत गहरी चीज हमारे सिद्धांत में। इसलिए गोवर्धन लीला साधारण चीज नहीं, कृष्ण गोवर्धन उठाया सबने हरिबोल कर दिया, ये ठीक नहीं, ये इतना ही नहीं है, ये बहुत बहुत गहरा, इट इज सच ए डीप थिंग। इसलिए जब भी भक्त लोग जाते गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, कभी कभी ऐसी परिक्रमा इतना भीड़ लगती है, वृंदावन से ज्यादा भीड़ गोवर्धन में रहती है। कभी कभी जब राजस्थान जाते हैं तो समय है, लोग हमको कहते हैं कि जब हरे कृष्णा बोलते हैं या किससे मिलते हैं, वो है कहते हैं हम तो हर महीना जाके गोवर्धन परिक्रमा लगा के आते हैं, कभी 40 साल से कर रहा है। किसी कुछ दिन पहले मैं राजस्थान गया था, एक व्यक्ति ने कहा मुझे तो ये आप तो हम गोवर्धन जाते हैं हर महीना, मैं वृंदावन में जाए कहते वृंदावन ठीक है, जाए नहीं जाए मालूम नहीं, गोवर्धन परिक्रमा करके जरूर आते हैं। तो मैंने पूछा कि ऐसा कब करते हैं, कितने साल से कर रहे हैं, ने कहा जब से मेरा होश है तब से मैं कर रहा हूं, जब से मैं तो उसका मतलब क्या है कि आपके पिताजी भी करते थे, ने कहा था हमारे पिताजी है, उनके दादाजी है, ये कंपलसरी है। जब बच्चा चलना सीखता है, ये बहुत बड़ी बात है, जब बच्चा चलना सीखता है ना तब से उसको गोवर्धन परिक्रमा लगा देते हैं, हर महीना करते बोलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए ये नहीं छूटा। ऐसा ऐसे एक परिवार नहीं, अनेकों परिवार। कभी कभी ऐसा परिक्रमा करने में लगाओ, इतने लोग परिक्रमा करते हैं, वो कोई प्रचार करने वाला नहीं, कोई बोला नहीं परिक्रमा करो, कोई यात्रा के रूप में नहीं आए, लाखों हजारों लोग आ रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ स्पेशलिटी है, कुछ विशेषता है। देखिए प्राय बहुत सारे लोग आते हैं वृंदावन, द्वार की विहार के दर्शन किया, कुछ बाहर कुछ खा के चले जाते दिल्ली के लोग, लेकिन उधर क्या है, गोवर्धन परिक्रमा के लिए ही आने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं कुछ और पिकनिक के रूप में आया, नहीं, उनका ऐसा सिस्टम बन गया, उनका रूटीन बन गया। जैसे सुबह उठते व्यक्ति ब्रश कर ले लग जाता है, उसको सोचना ही पड़ता है मुझे करना है, उनका वो सिस्टम में बन गया। वैसे हजारों लाखों परिवार ऐसे हैं बरसों से अनेकों कालों से ये गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं। कि एक व्यक्ति का ऐसा कहना था, चलो जी आप निश्चित रूप में महीने में एक बार जाते हैं, तो कभी मन किया तो करके आ जाता हूं, ऐसा बोला। तो एक बड़ा व्यापारी है, करोड़ों करोड़पति का, ऐसी बातचीत करते उन्होंने कहा कि ऐसे मन कर जाता ना कभी चले जाता हूं मैं, तो परिवार वाले उनकी पत्नी बैठी थी वो कभी कभी नहीं है, रात को घर नहीं आया, मतलब समझना चाहिए कि वो गोवर्धन परिक्रमा चले गए ऐसा विशेष विशेष लगाओ, पता लगता है कि कितना महान चीज है गोवर्धन। तो गोवर्धन का परिचय उनकी प्राकट्य देते हुए कहा कि किस प्रकार ये अपनी कृष्ण के हृदय से उत्पन्न हुआ है, ये कृष्ण की सृष्टि है, कृष्ण की भेंट है, कृष्ण का गिफ्ट है ये गोवर्धन, किसको? राधा रानी के लिए। अभी राधा रानी ने क्या किया? कृष्ण की इच्छा पूरा करने के लिए कृष्ण को भी एक भेंट दिया। तो राधा रानी ने एक चीज की सृष्टि की, वो है नवद्वीप धाम। नवद्वीप जो है राधा रानी की सृष्टि है और कृष्ण गोवर्धन जो है कृष्ण की सृष्टि है। कृष्ण ने गोवर्धन को सृष्टि करके राधा रानी को भेंट दिया और दूसरी वो राधा रानी ने नवद्वीप को सृष्टि करके कृष्ण को भेंट दिया, इसलिए राधा रानी ने स्वयं नवद्वीप धाम को सृष्टि किया। हमारा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत इतना गहरा है और उनकी संस्कृति इतना गहरा है, उसका धाम इतना सुंदर इतना अद्भुत है, इसलिए भक्तों को इन सब चीज के विषय में जानना चाहिए। तो भगवान इस लीला में खास करके सभी जितने भी व्रजवासी है उनको प्रेरणा दे रहे, इंद्र का पूजा मत करो, उसको तर्क दे दिया, अभी सब लोग शांत हो गए, अभी किसका करें किसका पूजा करें, उसका विशेषता को वर्णन करते हुए ने कहा कि हम वनवासी है, कृष्ण जो है वो अगर पूछा जाए वो कहां उनका कौन सा गांव है, वो कोई गांव में नहीं रहते, वो वनवासी है। जब नंदगांव में आते थे ना कृष्ण, शाम को आते सी ऐसा उनको लगता था कहां आ गया वापस, मुझे वापस जंगल जाना है। नंदगांव में दिन भर गाय चराते हुए वापस आए, आके यशोदा में कपड़ा चरा दिखाया, संदनवन चरा दिखाया, यशोदा ने उसको खूब नहलाया खिलाया ड्रेसिंग किया और यशोदा ने क्या किया उनको सुलाने के, और जैसे कृष्ण ऐसा आंख बंद करके सोने का नाटक किया, जैसे सो गए कृष्ण, यशोदा ने सोचा कृष्ण सो गए चलो अपने काम में वापस चले जाते हैं, सुबह उठाने आओगे, और जैसे यशोदा बाहर गए कृष्ण एक आंख से देखते हैं, जा गई ना अभी चलो, अभी किटकी से कूदा कृष्ण वापस वन में। सुबह दिन भर किसका? साक्ष्य रस का आस्वादन, रात भर माधुर रस का आस्वादन, यही कृष्ण का है। केवल एक गेस्ट हाउस के रूप में आते थे कौन? कृष्ण इधर नंदगांव में, इसलिए इधर कहा गया है कि न ग्राम, हम गांव में भी निवास नहीं करते और ना गृह, मेरा कोई घर नहीं, खाली आके बस यशोदा को चेहरा दिखाना पड़ता है इसलिए आके बस। तो दिन भर साक्ष्य रस और रात भर क्या है? माधुर रस, इसी का आस्वादन। इसलिए कृष्ण अपने आप को कहते हैं आप सब तो छोड़ो, मैं तो कौन हूं, मैं वनवासी हूं, और वन खास करके तात नित्यम वन शैल निवासी नहा, वनोखसा तात नित्यम, ताता ये शब्द के द्वारा अपने पिताजी को संबोधित है, बड़े प्रेम से संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े गहरे सिद्धांत को कहा कृष्ण ने, तो उनको शांत करने के लिए तात नित्यम वनोकसा, वनोकसा तात नित्यम वन शैल निवासी नहा, हम उधर रहने वाले हैं, इसलिए अभी मैं आपके लिए एक प्रस्ताव रखता हूं। क्या प्रस्ताव है? तस्माद् गमं ब्राह्मणानां, गावे को ब्राह्मणों को और खास करके इन गोवर्धन को इनको पूजा करना चाहिए, उनको पूजा करना चाहिए, गायों को पूजा करना चाहिए, ब्राह्मणों को पूजा करना चाहिए और गोवर्धन को पूजा करना चाहिए। इन तीन चीजों की पूजा का वर्णन अगले श्लोक में भगवान करते हैं। देखिए भगवान का नाम है नमो ब्राह्मण, कृष्ण का वर्णन करते हुए एक मंत्र है नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च। अभी नमो ब्राह्मण्य देवाय, कृष्ण कौन है? ब्राह्मणों के देव है, और गो ब्राह्मण्य हिताय च, गायों को हित करने वाले हैं, ब्राह्मणों के देव हैं, गायों के देव हैं, भले ही ब्राह्मण भी है गाय भी है, उन दोनों में कौन श्रेष्ठ? गाय श्रेष्ठ है, क्योंकि गायों के बिना ब्राह्मण का समाज नहीं रह सकता। इसलिए जब पुराने जमाने में जब राजा दान करते थे ब्राह्मणों को, गाय का दान करते थे, इसलिए गोदान की बहुत महिमा है। क्यों? आप एक गाय को दान करोगे या गायों की रक्षा करोगे तो क्या होगा, ब्राह्मणिकल संस्कृति जो है वो रहेगी। गायों की हत्या के द्वारा ब्राह्मणों की हत्या हो जाती है, क्योंकि ब्राह्मणिकल संस्कृति पालन नहीं कर सकता है। क्यों? गाय दूध देती है, जब गाय बछड़ा देती है तो उसको दूध देती है, वो भी बछड़े के लिए थोड़ा सा ही लगता है, बाकी दूध जो है उससे जो भी चीज बनता है, दूध हो घी हो, जब ब्राह्मण लोग उस दूध को पीते हैं या समाज जब दूध को सेवन करता है, घी का सेवन करता है गाय का, उसका बुद्धि बहुत सूक्ष्म हो जाता है, इतना अच्छा हो जाता है जिसके द्वारा वो वेदों को स्मरण कर सकते हैं, शास्त्रों को अध्ययन कर सकते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, समाज में धर्म की स्थापना होती है। इसलिए गायों के बिना, उसका दूध के बिना, उनके दही के बिना, घी के बिना ब्राह्मण सभ्यता टिक नहीं सकती है। आजकल लोग बोलते ना कि हार्ट में ब्लॉकेज है, इसलिए डॉक्टर ने घी खाना मना किया है। तो ये सब जितने भी बातें हैं, ये हमारे अंदर आध्यात्मिकता को खत्म करने वाली बात है, शूद्रों की समाज को खड़ा करने वाली बात है। अस्तित्व में घी के बिना कैसे चलेगी जीवन? लेकिन वो बोलते हैं अभी खाओ मत उसको। लेकिन आजकल जो घी मिलता है वो तो जहर है, लेकिन शुद्ध जो देसी गाय का जो घी होता है उसका सेवन करना चाहिए, जिसके द्वारा हमारा बुद्धि जो है वो टिकाने पे आती है। इसलिए भगवान जब सुबह उठते हैं सबसे पहला गाय का पिछला भाग तो देखते हैं। क्यों? दक्षिण भारत में कोई मंदिर में जाइए, सुबह के समय में गाय को लेके आते हैं और उनको उल्टा खड़ा करके रखते हैं, और भगवान का जब पट खुलता है ना, सबसे पहला गाय का पिछला भाग तो देखे, गो पूजा करते हैं, बाद में बाकी सब का चेहरा देखते हैं भगवान, क्योंकि सबका चेहरा अशुभ है, लेकिन क्योंकि सब इच्छाओं को लेके आया, वो देखते हैं यार पहले, बाद में इन सबको देखता हूं, पहले मैं अपनी शुभता को प्राप्त कर लूं। तो इसलिए गाय का अति अति महत्वपूर्ण स्थान है। अभी ये गोवर्धन कृष्ण के लिए अति प्रिय क्यों है? क्योंकि गायों का आनंद को वर्धन करने वाला, इसलिए जो भी गाय को प्रसन्न करता है कृष्ण का, कृष्ण को प्रसन्न करने जैसा है, कृष्ण उसे अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आजकल बोलते गो रक्षा, गाय को रक्षा करने लिए होते कौन है हम लोग, गाय हमारी रक्षा करेगी, इसलिए गायों को पूजा करना चाहिए, गायों की देखभाल करना चाहिए, जिसके द्वारा गाय हमको देखभाल करेगी। देखिए आप कृष्ण भक्त बनने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन गो भक्त बने बिना कोई कृष्ण भक्त हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। ये कृष्णकांक्ष सभ्यता जो है, प्रभुपाद जी का आप कितने परपोट देखिए, कितने प्रवचन देखिए, कृष्ण के बारे में जितना कहा है उतने गायों के विषय में कहा उन्होंने। प्रभुपाद जी बार बार कहा करते थे, एक एकड़ जमीन एक दो गाय, बस एक परिवार चल सकता है, एक जमीन एक एकड़ जमीन एक गाय। लेकिन आजकल की जो आधुनिक सभ्यता की वजह से लोग प्रयास कर रहे कृष्ण भक्त बनने की, लेकिन गो भक्त बनने की प्रयास नहीं कर रहे। जितना आप भोग भक्त बनोगे उतना कृष्ण भक्त बन पाओगे। तो इसलिए हम सबको थोड़ा सा एक गो कैसे गो भक्त बने इसके विषय में ध्यान देना चाहिए। कृष्ण का सीधा ऑर्डर है, भगवीता है, भगवान ने कहा कि आप मेरा स्मरण करो, आप मेरा प्रणाम करो, बाद में उन्होंने कहा कि ये मेरा मत है, वो जगह उन्होंने कहा ये मेरा मत है, योगी नाम सर्वेशम मदगति नंतरात्मा श्रद्धावान भजते एवं समय युक्त तो वो मता, मेरा मत है। लेकिन आपका अगले कल का जो श्लोक में कृष्ण ने सीधा आज्ञा दिया, क्या आज्ञा दिया, तस्मात गवाम ब्राह्मणानाम अद्रेश चार भयताम मका, यज्ञ करो। किसके लिए? गायों को, ब्राह्मणों को और गोवर्धन को पूजा करो। ये सीधा ऑर्डर है, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। मैंने जितना भी आर्ग्यूमेंट करना था कर दिया है, आगे कोई आर्ग्यूमेंट मत करना, कोई बात नहीं करेगा, नो क्वेश्चंस, कोई बात नहीं, बस जो बोला करो। इसके पीछे क्या है पूछो, ये कुछ मत पूछो, जो बोला है वो करो बस। क्या है? ब्राह्मणों को, गायों को, गोवर्धन को, तीनों को करो। इसने कहा देखिए इन तीनों का अगर पूजा हो, इन तीनों के प्रति भक्ति हो, कृष्ण की भक्ति अपने आप प्रकट हो जाएगी। क्योंकि गोवर्धन क्या है, कृष्ण के हृदय में रहने वाला राधा रानी के प्रति प्रेम की बात है। और ये क्या कर रही है गोवर्धन, गायों को जो कृष्ण के लिए अति प्रिय है उनकी आनंद को वर्धन कर रही है। ऐसा वर्णन आता है जब गोवर्धन को देखने मात्र से गाय का पूंछ ऊपर उठ जाता था, ऊपर उनके ऐसी भागती थी गाय, ऐसी भागती थी गाय, और उन गायों को पकड़ने के लिए ग्वाल वाल पीछे पीछे भागते थे। जब गाय पूंछ को ऊपर उठाती है ना और भागती है, समझना चाहिए एकदम परम आनंद में है। कृष्ण लीला में गोचरण लीला में एक बात आती है, जैसे गोवर्धन दूर से दिखाई पड़ा सब गाय जो है एकदम पूंछ उठा के भागने लगी और पीछे पीछे ग्वाल वाल भागते गायों को पकड़ने के लिए। तो ये विशेष लीला है, गोवर्धन लीला। अभी आगे किस प्रकार भगवान गोवर्धन को धारण करेंगे और भी गोवर्धन के विशेष तत्व, गोवर्धन के जो जो लीला है उसको, गोवर्धन को स्तुति करने वाले जो श्लोक है, अगली बार कभी भी क्लास होता है उसमें थोड़ा थोड़ा सांश लेते रहेंगे। हमारा सौभाग्य है कि हमारा मंदिर का जो उद्घाटन है उसी समय हो रहा है जहाँ भागवत में गोवर्धन लीला की भी चर्चा हो रही है। हमारा गिरिधारी है और गोवर्धन धारण करने की लीला है, ये दोनों साथ साथ में है। क्या जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा के सब लोगों को रक्षा दिया, ये समझना चाहिए कि ये मंदिर भी गोवर्धन है। गोवर्धन जैसे दिखाई पड़ता है कि नहीं, पहाड़ जाए भगवान ने उसको उठाया। लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन में, लोग बोलते हैं भाई मंदिर आपका उठ गया। तीन चार महीने पहले किसी ने कहा जी आपका मंदिर तो बहुत उठ गया। मैंने उठ क्या गया, मैंने क्या वैसा देसी भाषा में बोलते होंगे इसका, वो उठ गया मतलब कंस्ट्रक्शन नीचे था भी बड़ा उठ गया इतना। तो मैंने कहा कृष्ण ने उठाया है। तो ये भी गोवर्धन जैसा ही है, कृष्ण ने उठाया है। भले कृष्ण जो है 7 सेकंड में उठाया था, वो टाइम में ब्रजवासी थे, हम तो ब्रजवासी नहीं लगता है, हमारे बहन बताए इतना भक्ति ने उनको 7 साल लगा उठाने के लिए। जो ही उठाया तो सही, 7 सेकंड हो 7 साल हो, ब्रजवासी इतने प्रेमी भक्त है, उनके आवेश में कृष्ण ने कल 7 सेकंड में फटाक से उठा दिया। लेकिन हमारे लिए हमारे अंदर इतना भक्ति नहीं था लगता है, इसलिए वो उनको उठाने के लिए 7 साल लगा। जो भी कृष्ण ने उठाया है तो हम उनका शरण लेना है, पैराडाइज शेल्टर। श्रील प्रभुपाद जी के विषय में कहा गया है, प्रभुपाद जी उपस्थित थे अपने जीवन में, उन्हें 108 मंदिरों का निर्माण किया। जब जन्म लिया था उसी समय जन्मपत्र कुंडली में लिखा था 108 मंदिर बनाएगा, एक 108 प्रभुपाद ने मंदिरों बनाया। लेकिन उसके बाद भी अनेक मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, करीबन 500-600 केंद्र प्रभुपाद जी जाने के बाद कम से कम 500 मंदिर तो खुल गए उसके बाद। तो उस समय प्रभुपाद के विषय में एक भक्त ने कहा और उसको एकदम बिल्कुल ऐसा हो गया कि प्रभुपाद जी इस्कॉन की स्थापना करके, अनेक मंदिरों को स्थापना करके, उनके विषय में ऐसा कहा जाता है कि ही बिल्ट ए हाउस। प्रभुपाद ने क्या किया, ही बिल्ट ए हाउस, उन्होंने एक ऐसा घर बनाया वेयर द होल वर्ल्ड कैन स्टे। ऐसा उन्होंने एक घर बनाया जिसके अंदर क्या हो सकता है, पूरा दुनिया रह सकता है। तो ये जो है प्रभुपाद जी का ही घर है, इस्कॉन प्रभुपाद जी का घर है, और उसको कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया है। जिस प्रकार सारे ब्रजवासी आके गोवर्धन के नीचे शरण लिए, उसी प्रकार हम सबको कृष्ण ने जो गोवर्धन उठाया ना, राधा गिरधारी मंदिर नामक गोवर्धन, उनसे उसके नीचे आके सबको शरण लेना चाहिए। इसका मतलब क्या, जाके वो हॉल में बैठ जाओ। आप रो यहाँ गो ब्रजवासी जैसे सब जाके बैठ जाएंगे उधर। बात हो रही है कृष्ण का शरण लेना मतलब उनका सेवा करना। सेवा के बिना शरण क्या है फायदा। जैसे मान लीजिए एक कीड़ा है या उसको क्या बोलते कटमल, कटमल जो है वो गुरु का शरण लिया है कि नहीं। सबसे नजदीक कौन रहता है, व्यासासन में कटमल है समझ लो, अभी इसमें तो नहीं है लेकिन होता था। ऐसे कोई शिष्य हो ऐसे व्यासासन रखते उसका बहुत कटमल। तो कटमल क्या करता है, सबसे नजदीक कौन है गुरु के, खटमल है कि नहीं, हा? और क्या करता वो खून ले रहा है गुरु का। तो खटमल से वो क्यों ले रहे हो, आपने ही तो बोला, गुरु ने बोला, हा? सब लोगों ने बोला गुरु का शरण लेना चाहिए, तो मुझे जीवित रहना है तो खून की आवश्यकता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपने बोला शरण लो तो मैंने शरण ले लिया। ऐसा नहीं, शरण मतलब सेवा। एक शिष्य भी गुरु का शरण लिया, प्रभुपाद जी ने अपने गुरु श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर का शरण लिया। शरण लेने का अर्थ क्या है, उन्होंने क्या किया, उनकी उन्होंने बड़ा सेवा किया। जैसे हमने गुरु पूर्णिमा मनाया, बहुत सारे फोटो आ रहे थे मोबाइल में, गुरु के चरणों में कोई कोई खड़ा है, उसका खाली पैर दिखाई पड़ रहा है, और पूरा पूरी फूल डाल रहा है, कोई वो कोई श्लोक भेज रहा है, कोई बोल रहा है प्रोजी हैप्पी गुरु पूर्णिमा, मतलब कौन सी हैप्पी है इसमें हैप्पी गुरु पूर्णिमा। तो आश्चर्य के लोगों को मालूम नहीं गुरु कौन है, वो स्पिरिचुअल मास्टर। हाँ। गुरु का वास्तविक परिभाषा क्या है, दे डोंट नो, और शिष्य का वास्तविक परिभाषा क्या वो भी नहीं मालूम। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सरल भाषा में कहा, गुरु मतलब कौन है, गुरु मतलब वो है जो परंपरा के आचार्य के अनुसार शिक्षा प्रदान करता है, वो गुरु है। परंपरागत आचार्यों के अनुसार जो शिक्षा प्रदान करता है वो गुरु है। जो भी हमारे षट गोस्वामी ने जो भी सिखाया उसको सिखाने वाला गुरु है। और परफेक्ट शिष्य कौन है, प्रभुपाद अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा बताते हैं, द परफेक्ट डिसाइपल, परफेक्ट शिष्य वो है जो गुरु को एक प्रश्न पूछता है, एक ही प्रश्न पूछता है, बाकी सब सिद्धांत को समझने वाला प्रश्न तो ठीक है लेकिन एक प्रश्न पूछता है। क्या है वो प्रश्न, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूं, हाउ आई कैन सर्व यू। तो ये परफेक्ट शिष्य है। तो ये इस प्रकार का प्रश्न पूछ के क्या सेवा करना है वो जान के वो सेवा को करना, उसको शरणागति कहा जाता है। एक कटमल भी गुरु का शरण लिया है, एक शिष्य भी, एक अच्छा शिष्य भी गुरु का शरण लिया है। दोनों में अंतर क्या है, कटमल जो है गुरु का खून चूसता है, शिष्य जो है उस उनका गुरु का जो टेंशन है, उनकी जो चिंता है उसको अपने सर पे लेता है। एक टेंशन दे रहा है, दूसरा टेंशन ले रहा है। तो शरणागति ये मतलब क्या है, ये नहीं कि गुरु के ऊपर संपूर्ण रूप में शरणागत होके अपना पूरा भार उनको दे के, अपना पूरा जिम्मेदारी उनको दे के उनको परेशान कर देना, नहीं, उनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना, इसको शरणागति कहा जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको जिम्मेदारी दिया है, क्या क्या जिम्मेदारी दिया, क्या क्या चिंता दिया, जारे दाको तारे कहो कृष्ण उदा, हमारा आज्ञा गुरु हो ता तुम गुरु बनो। तो कुछ लोग गुरु बने, तो उनके आज्ञा क्या है, उनकी आज्ञा यही है कि आप श्री प्रभुपाद जी के आंदोलन को बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी लो, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भगवान की सेवा करने की जिम्मेदारी लेना ही वास्तविक शरणागति माना जाता है। तो कृष्ण हमारे लिए ये मंदिर का उठा के, मंदिर उठा के क्या किया, गोवर्धन उठाने के जैसा कार्य किया, जैसे सारे ब्रजवासी जो है हम गोवर्धन का शरण लिए। तो आप सबसे ये निवेदन है, या मैं भी आप सबको भी क्या करना चाहिए, दादा गिरधारी जो मंदिर निर्माण हुआ उसका शरण लेना चाहिए। शरण मतलब उनका सेवा करने की जिम्मेदारी लेना चाहिए। हमारा उद्घाटन का जो दिन है 23 तारीख 27 तारीख है, क्या क्या होंगे उस समय, क्या क्या प्रकार की सेवा होंगे, उसके विषय में हमारा एक मीटिंग है दोपहर को 3 बजे, संडे फीस्ट के बाद 3 बजे, मतलब 3 बजे ठीक आ जाना चाहिए। लेकिन उन्हीं लोगों को आना है जो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, उन्हीं लोगों को आना है जो 23 से 27 तक जो कार्यक्रम होने वाला है उस कार्यक्रम में पूरा सेवा देने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं कि ठीक है प्रभु जी आप बताइए मैं 1 घंटा आ सकता हूँ, वो 1 घंटे में क्या करना बताइए, उसका ऐसा ऐसा ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है 3 बजे आना। ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो 500 के 500 दिन हम खड़े हैं, जैसे कृष्ण ने क्या गोवर्धन उठाया, बीच में से ब्रजवासी ऐसा नहीं सोचा थोड़ा सा बाहर जाके देख के आता हूं, 7 के 7 दिन सब रहे कि नहीं, हो सकता है कि अभी थोड़ा सा भगवान की और कृपा हो, हम 23 तारीख से 27 तारीख का प्रोग्राम करने की सोच रहे, भगवान की कृपा हो तो हम 19 तारीख से करने शुरू करेंगे, 20 तारीख से करेंगे, राधाष्टमी भी हो जाएगा साथ में, राधाष्टमी 21 तारीख को है, सितंबर 21 तारीख को है, राधारानी की कृपा रहेगी तो अगर पंडाल वाला मान जाए तो हम थोड़ा 2 दिन और एक्स्ट्रा कार्यक्रम बढ़ेंगे। तो वो पूरा हफ्ता जो है वो पूरा कृष्ण के लिए सेवा के लिए समर्पित करना, ये भाव जिसके अंदर है वो निश्चित रूप में वो 3 बजे आए और कार्यक्रम के विषय में आप जान सकते हैं और आप क्या क्या सेवा करना है उसके विषय में भी आप आदान प्रदान कर सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, क्वेश्चंस?